शिक्षार्थियों, सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि हिंदी की दुनिया बहुत ही व्यापक है और उसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है हिंदी। इसका फैलाव जीवन के हर हिस्से में है, खासतौर से कार्यालयों में जो हिंदी का प्रयोग हम करते हैं और रोजमर्रा के कार्यों में करते हैं, उस हिंदी का स्वरूप अलग है और वही इस पाठ का लक्ष्य है।
स्वरूप अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अगर आपको वो हिंदी नहीं आती है तो आप बहुत जगह जिंदगी में मात खा जाते हैं। कई बार कुछ कागजात ऐसे होते हैं, चाहे जमीन जायदाद की बात करें, चाहे किसी कोर्ट से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं, वो कई बार हिंदी में होते हैं। आप खास तौर से, मैंने रजिस्ट्री के पेपर्स जो होते हैं वो हिंदी में अगर होते हैं तो उनको समझना, उसका सही मीनिंग क्या है, ये सब जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपके लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अगर आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो वहाँ आम बोलचाल की हिंदी नहीं चलेगी, वहाँ की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे कार्यालय में प्रयोग करते हैं, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, विचारार्थ प्रस्तुत है या संस्तुति की जाती है, ऐसा दैनिक जीवन में नहीं प्रयोग करते,
नहीं, नहीं है ना? कहा जाता, बिल्कुल ठीक।
तो ये जो कार्यालयी हिंदी है जिसको राजभाषा भी कहते हैं, उसके प्रयोग को जानना शिक्षार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर उनके लिए जो बाद में चलकर नौकरी में उसका प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों जो विषय हैं, इस पर संक्षेप में हम बात करेंगे कि तीनों का स्वरूप क्या है और इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिवेदन क्या है। किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी प्रतिवेदन है, जिसको अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहते हैं, है ना? कोई भी घटना हुई हो उसकी रिपोर्टिंग पत्रकार करते हैं, है ना? या मान लीजिए कि
बिल्कुल वैसा का वैसा परोस देना,
प्रस्तुत करना। जैसे विद्यालयों में एनुअल डे होता है या स्पोर्ट्स डे होता है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, है ना? उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह भी लगाए जाते हैं और क्या क्या घटनाएं उसमें, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, गतिविधियां हुई, उसका विवरण दिया जाता है। तो वो प्रतिवेदन का स्वरूप है। और कार्यालयों में अक्सर ऐसा होता है कि कार्यक्रम चलते रहते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग एक महत्वपूर्ण कला है। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में दंगा हो जाता है तो उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। तो अगर कोई पत्रकार है तो उसे पूरी जानकारी लेनी होगी, उसकी जांच पड़ताल करनी होगी घटना की, और एक ऐसी रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें सच्चाई का पता चले। तो इसलिए शिक्षार्थियों, प्रतिवेदन की उपयोगिता को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही विभिन्न घटनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, इसमें जनहित की भावना भी होती है, कोशिश की ये की जाती है कि कोई गलत चीजों को न दिखाया जाए, उसके अलावा कोई ऐसी बातों को नहीं बताया जाता है जो विवादास्पद है
जी।
तो अगर हम प्रतिवेदन के तत्वों को देखें तो इसमें पहला तत्व हो गया घटना या स्थिति विशेष, दूसरा है मनोनीत प्रतिवेदक या गठित समिति की नियुक्ति, तीसरा है सूक्ष्म निरीक्षण तथा पूर्ण जांच पड़ताल, चौथा है प्रमाण तथा तथ्य। आप के पास अगर प्रमाण नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं तो उसको मानेंगे लोग कैसे? जैसे समाचार पत्रों में भी हम देखते हैं, हम कहते हैं कि कौन सा प्रामाणिक न्यूज ज्यादा है ना, जिसमें तथ्य ठीक हो और उसको पुष्ट भी किया जा सके। उसके बाद सुझाव और सिफारिश भी की जाती है उसमें कि ऐसा होना चाहिए, है ना? निश्चित अवधि होती है, आप देखेंगे कि अखबार एक दिन के बाद पुराना हो जाता
जी,
है
जी, जी।
है ना, उसकी अवधि उतनी ही है। तो रिपोर्ट भी, अगर आप घटना कोई मान लीजिए गतिविधि आज हो रही है तो कल तक अगर रिपोर्ट नहीं आती है उसकी
तो पुरानी हो जाएगी,
किसी काम का नहीं है वो।
ठीक।
तो प्रतिवेदन की अगर विशेषताओं को देखें तो इसमें प्रामाणिकता होती है और तथ्यात्मकता होती है, विषय या घटना पर केंद्रित होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण विशेषता है निष्पक्षता एवं तटस्थता। आप किसी घटना को
जैसा है ज्यों का त्यों आपको
प्रस्तुत कीजिए, उसको
करना है, अपने विचार उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, अपना दृष्टिकोण, अपने विचार, इनसे दूरी बनाए रखिए।
और भाषा वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए
ताकि जनसाधारण तक पहुंच
सके। प्रतिवेदन लिखें कैसे, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, तो इसमें मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। संबद्ध विषय का गहन अध्ययन करते हुए उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना। आप क्यों रिपोर्ट लिख रहे हैं, है ना, पता होना चाहिए
जी।
और उद्देश्य के अनुरूप कार्य प्रक्रिया की रूपरेखा बनाना। मान लीजिए कि अगर एनुअल डे में, वार्षिक कार्यक्रम में 4-5 गतिविधियां हुई हैं, तो आपको क्रमबद्ध रूप से उसको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा विषय से संबद्ध तथ्य को एकत्रित करना आपको देखना होगा। मान लीजिए कहीं पे हिंसा की घटना हुई, तो आपको पूरी जानकारी लेनी होगी कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ और वहां जिन लोगों ने आंखों देखा, वो घटना को सामने से देखा, उसको उसका इंटरव्यू करना, उसके उससे जानकारी लेना जरूरी
और
है।
इन सब के बावजूद भी ये ख्याल रखना कि वो कोई ऐसा मत या कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य ना चला जाए जिससे कि और तरह की समाज में दुविधाएं खड़ी हो जाएं, जैसे कि किसी जाति विशेष को लेकर कोई टिप्पणी ना की जाए, कोई बात ना की जाए, और कोई बात हुई भी है
असंवैधानिक तो नहीं,
असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और उसको निग्लेक्ट किया जाए।
ये भी एक विशेषता होती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बताए, एक पक्ष को नहीं दिखाना चाहिए वहां पे। और सर्वेक्षण और साक्षात्कार आदि के विश्लेषण से ही अपना रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। निष्कर्ष या सुझाव तैयार करते समय एक उसका प्रारूप बनाना चाहिए। पहले आप लिख कर देखिए कि आप निष्कर्ष क्या दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा,
बिल्कुल,
है ना। और अंत में सभी जानकारियों को इकट्ठा करके प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। और यही प्रक्रिया कार्यालयों में भी होती है,
बिल्कुल ठीक।
दूसरा है टिप्पण लेखन, है ना, टिप्पण लेखन, नोटिंग। कार्यालयों में एक अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी के पास अपनी बात को प्रस्तुत करता है, एक ग्रीन शीट होती है उस पे, तो वो जो भी कहना चाहता है ग्रीन शीट पे वो अपनी बात को रखता है। उसके लिखने की एक कला है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि क्या विषय है, संदर्भ
जी,
संदर्भ बताना पड़ता है। और संदर्भ के बाद जो हाशिएदार कागज होता है, हरी नोटशीट पे लिखना चाहिए, बाईं तरफ नहीं लिखना चाहिए, या दूसरे पेज पे दाईं तरफ जहां पे वो एक लकीर बनी होती
जी,
है
जी।
और पत्राचार भाग फाइल के अंदर होता है, लेकिन ये जो नोटिंग है उसके साथ उसके कागजात लगाने होते हैं। आपने लिख दिया कि मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ, उसमें ये कहा गया है, और आपने पत्र लगाया नहीं,
पत्र लगाया नहीं, बिल्कुल,
है ना, तो उसके साथ पत्र लगाया जाता है, पत्र का संदर्भ दिया जाता है और उसका विस्तार भी किया जाता है। मान लीजिए कि कहीं शिक्षा मंत्रालय से पत्र आया और उसमें ये कहा गया हो कि आप महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मनाएं
जी,
है ना, तो उसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी, नोटशीट पे पूरा विवरण देना होगा कि ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई जाए, इसमें शपथ भी लेना है या स्वच्छता का कार्यक्रम भी करना है, तो पूरा नोटशीट पे उसका विवरण तैयार किया जाता है। उसके बाद जो सहायक होते हैं, मान लीजिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो अपने विचार को भी रखते हैं कि इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, और निर्णय के लिए फाइल अपने बड़े अधिकारी के पास प्रस्तुत करते हैं। अब आप देखें कि ये अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं तो आप टिप्पण पूरी तरह से नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में
कमी रह गई है।
तो टिप्पण लेखन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। और टिप्पण लेखन भी दो तरह का होता है, एक तो विभाग के लिए अपने अंतर विभागीय होता है, दूसरा होता है दूसरे विभागों के साथ अंतर विभागीय, है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि आप अपने अधिकारी के साथ अगर केवल टिप्पण लिखना चाहते हैं तो उसमें स्वतंत्रता भी होती है कि आप एक ड्राफ्ट बनाएं फिर जाकर बात करके चले आए। लेकिन अगर दूसरे कार्यालय के साथ, दूसरे ऑफिस के साथ अगर नोटिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अशुद्ध नहीं हो, उसमें तथ्य सही हो और पूरी तरह से उसमें संदर्भों का जिक्र किया गया हो। आप अपने स्वाध्ययन सामग्री में देखेंगे तो उसमें कई उदाहरण दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि टिप्पण लिखने समय किन किन बातों का ध्यान रखें, जैसे अनुच्छेद में बांट कर बातों को रखना और कोई आक्षेप नहीं लगाना किसी पे, ये भी नियम होता है। और तथ्यात्मक होना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और टिप्पण के अंत में दिनांक सहित हस्ताक्षर जरूर करना चाहिए
जी।
तो ये टिप्पण का स्वरूप है
जी।
अब प्रारूपण को थोड़ा समझ लेते हैं। ड्राफ्टिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्यालय में पत्रों के माध्यम से ही सारा कार्य किया जाता है, तो एक विभाग दूसरे विभाग के साथ पत्र के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करता है
और आपस की जो समस्याएं हैं उनका भी जो सुलझाना होता है उनको, वो भी पत्र के माध्यम से ही की जाती है।
हाँ, और पत्र लिखने के पहले उसका एक कच्चा स्वरूप तैयार किया जाता है
जी,
जिसको ड्राफ्ट कहते हैं, मसौदा
जी।
तो पहले मसौदा तैयार किया जाता है, मसौदा को प्रस्तुत किया जाता है अधिकारी के पास और अधिकारी उसमें जो भी संशोधन होता है उसे करते हैं और उसके बाद पत्र दूसरे विभाग को भेजा जाता है। इसे तैयार करते समय जो पत्राचार के विभिन्न उसके स्वरूप हैं, अलग अलग तरह के पत्र होते हैं, जैसे परिपत्र होता है, अधिसूचना होती है, नेमी पत्राचार होता है, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप पत्र का अगर प्रारूप नहीं जानते हैं तो गलत उसमें फॉर्मेट में आप पत्र भेज देंगे
जी।
और प्रारूपण में ये भी जरूरी है कि शीर्षक दें, पत्र संख्या दें, दिनांक दें, प्रेषक और प्रेषिती लिखें और संबोधन करें किसको पत्र आप भेज रहे हैं और अपना हस्ताक्षर भी जरूर करें, बिना हस्ताक्षर के पत्र नहीं जाना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि आप कोई सुझाव देना चाहते हो, मान लीजिए दूसरे विभाग से कोई पत्र आया है उसका सुझाव देना चाहते हो तो उसका भी अवसर उसमें है, आप सिफारिश भी कर सकते हैं और अधिकारी के माध्यम से भी भेज सकते हैं और अगर अधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है तो आप अपने हस्ताक्षर से भी भेज सकते हैं
जी।
तो इस तरह से देखें कि हम इन ये जो पत्राचार के विभिन्न रूप हैं कार्यालयों में जो अलग अलग तरीके हैं भाषा के, इसके बारे में शिक्षार्थियों को जानना बहुत जरूरी है और इसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत लाभ होगा।